अगली सूरत मोमिन है। पीछे मोमिनून पड़ी थी, उसमें ईमान वालों की सिफात थी। यहाँ सिर्फ मोमिन क्यों है? क्योंकि ये सूरत एक फर्द के नाम पे, जिसने उन हालात में दावत इल्लाह का काम किया जब हालात मुनासिब नहीं थे, जिसको आप कह के अगेंस्ट द विंड्स जाके उसने काम किया। जहाँ वो आयात आएंगी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ से समझिएगा कि हामीम से शुरू होने वाली सूरतों का सिलसिला शुरू हो रहा है। इन सारी सूरतों के मजमूए को हवामीम कहते हैं, और इसके बारे में बहुत खूबसूरत अहादीस भी मिलती हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हर चीज़ का एक लुब होता है, और हामीम सजदा कुरान का लुब है, यानी लुब कहते हैं अक्ल को, गूदा। इसी तरह एक रिवायत में इसको समरा कहते हैं, फल। फरमाया, तुम में से जो जन्नत के बागों से गुजरना चाहे तो वो हामीम वाली सूरतें पढ़ ले। इब्ने मसूद कहते हैं कि जब तिलावत के दौरान हामीम वाली सूरतें शुरू होती हैं तो गोया के जन्नत के बागों में से गुजरना होता है। और इसी तरह हवामीम को शादाब ज़मीन के बागात भी कहा जाता है। इस पूरी सूरत में दावत इल्लाह और तफवीज़ुल अम्र इल्लाह, मैं अपने सारे मामले अल्लाह के सपुर्द करती हूँ और करता हूँ, और अल्लाह ताला के दीन का काम करता हूँ। तौहीद फिद दुआ इस पूरी सूरत का मजमून है। आइए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें मवाहिद बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त है, सब कुछ जानने वाला। ग़ाफ़िर ज़म्बी व क़ाबिल तौबी शदीद इल्क़ाब। ज़िद तौली ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। गुनाह माफ़ करने वाला, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। तौबा कबूल करने वाला, अल्लाह हमें पक्की सच्ची तौबा की तौफीक दे। सख्त सजा देने वाला, ए अल्लाह हमें अपनी सजा से बचा ले। बड़ा साहिब फजल, ए अल्लाह हम पे अपना फजल कर दे। कोई माबूद नहीं इसके सिवा, उसी की तरफ सबको पलटना है। अल्लाह की ये सिफात हम सबको उम्मीद दिलाती हैं कि तुम भी बख्शे जाओगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत था। एक शख्स जो आप ही का नॉमिनेटेड था, उसके बारे में चंद नेगेटिव बातें आप तक पहुंची, कुछ खराबियों का शिकार हो चुका है। याद रखिए, शैतान तो आलिम को नहीं छोड़ता, आम लोगों को कहाँ छोड़ेगा। लोगों ने उसकी बुराई की कि ये फुलां फुलां बुराई आ गई है, और हमने उसको समझाया तो आगे से अकड़ भी रहा है। आपको था हजरत उमर ने क्या किया? कागज निकाला, कलम निकाला, ये आयतें लिखी, ग़ाफ़िर ज़म्बी से लेके आगे तक उस बंदे तक पहुँचा दी। ये शुक्र है कि उनको तर्जमे के बगैर भी समझ आता था। जो ही उसने ये तहरीर पढ़ी, रोता हुआ शर्मिंदा हुआ आपके पास आया, रो रो के माफी मांगी और सारे गुनाह छोड़ दिए। ग़ाफ़िर ज़म्बी व क़ाबिल तौबी शदीद इल्क़ाब। ये छोटी बातें नहीं है, बंदा गुनाह करता है लेकिन गुनाह को माफ करने वाला भी तो बहुत बड़ा है। एक शख्स कहीं से गुजरा, मरी हुई एक खोपड़ी थी, यानी कोई लाश थी तो उसकी खोपड़ी थी। देखा उसकी हालत देखी तो कहने लगा है, रब तू तू है और मैं हूं। मैं आता हूं गुनाहों के साथ, तू आता है तौबा के साथ, यानी तू मेरे गुनाहों को माफ करता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे अगले पिछले जाहरी बातनी ढके छुपे सारे ही गुनाह माफ करते। मा युजादिलु फी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात में झगड़े नहीं करते मगर सिर्फ वो लोग जिन्होंने कुफर किया। इसके बाद दुनिया के मुल्कों में इनका चलना फिरना तुम्हें किसी धोखे में ना डाले यदि इनकी जाहिरी तरक्की से खुश ना हो। इनसे पहले नूह की कौम भी चुटला चुकी, और इसके बाद बहुत से दूसरे गिरोहों ने भी ये काम किया। हर कौम अपने रसूल पर झपटी। इसको हाईलाइट कर, किस पे बंदा झपटता है? जिस पे गुस्सा हो और जिसके बारे में ये शक हो कि इसने मेरी कोई चीज ले ली है, झपट के लेना चाहते हैं। क्या लिया था रसूलों ने कौमों का? उनकी आजादी, बाप दादा के नाम पर की हुई मस्तियां। इतना झपटे क्यों? ताकि उसे गिरफ्तार करे। इन सब ने बातिल के हथियारों से हक को नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर आखिरकार मैंने इनको पकड़ लिया। झपटे किस पे? रसूल पे। पकड़ा किसने? रसूल के रब ने। आज भी यही होगा, सिर्फ ईमान वाले अल्लाह से जुड़ जाए। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। इसी तरह तेरे रब का फैसला भी इन सब लोगों पर चस्पा हो चुका है जो कुफर के मुर्तकिब हुए कि वो जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। अब अल्लाह के बंदे, अल्लाह की जहन्नम, आपको मुझे इसमें कुछ ज्यादा इतराज़ करने की या बात करने की तो जरूरत ही नहीं है। अब यहां से फरिश्तों की दुआएं लेने का नुस्खा, इसको पहले पढ़िए फिर बात करते हैं। الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به عرش الهي کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جب وہ فرشتے کرتے تو ہم کیوں نہ کریں؟ شعور سے کہیے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ ایمان لائے اپنے لیے، فرشتوں کی دعائیں مل گئیں۔ آئیے ذرا دعا کے لفظ تو دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ دعا کا ادب، پہلے اللہ کی تعریف، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ کی ہے توبہ ہم نے تو مبارک ہو آپ کو۔ کتنا لوگوں کی دعاؤں کی بات کرتے ہیں، ہائے دعا کرنا، حرم میں جائے دعا کرنا، اعتکاف میں جا رہے ہو دعا کرنا، اور پتہ نہیں جو دعا بیچارہ کر بھی رہا ہے اس کے اپنے اور دعا کی قبولیت کے راستے کے کتنے روڑے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو جس کو فرشتوں کی دعائیں مل جائیں، کیا عمل ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا؟ توبہ۔ ابھی کر لیتے ہیں، اے اللہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے ہر گناہ کی توبہ کرتی ہوں، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے کہ جنہوں نے مجھے فرشتوں کی دعاؤں سے دور کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ان دعاؤں کو اس سوچ کے ساتھ بھی کیجئے کہ اللہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں لینی ہیں۔ آج کی دعا کھولیے ذرا، بہت خوبصورت ہے، توبہ ہی کے باب میں میں بولتی ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا لیں۔ تھوڑی سی نئی دعا ہوگی آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے۔ رب اغفر لی حطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری کلہ و ما انت اعلم بہ منی، اللہم اغفر لی خطایای و عمدی و جہلی و حزلی وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ اے میرے رب، میری خطا معاف کر دے اور میری جہالت اور زیادتی جو میں نے سارے کاموں میں کی اور جس کو تو خوب جانتا ہے، یا اللہ میری بھول چوک کو اور جو کام میں نے ارادے سے کیے اور میری نادانی اور لغویت یعنی بے ارادہ کیے ہوئے کو معاف کر دے۔ یہ سب باتیں مجھ میں موجود ہیں، یا اللہ میرے اگلے پچھلے چھپے اور کھلے سب گناہوں کو بخش دے۔ تو جس کو چاہے آگے کر دے، جس کو چاہے پیچھے کر دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس دعا کو شعور سے مانگیے گا، اور آپ کا اور ہوم ورک بھی یہی ہے کہ اس دعا کو مانگتے وقت یہ شعور رکھنا ہے، ادھر آپ نے اپنے دل کے ارادے شعور کے ساتھ دعا کی، ادھر فرشتوں کی دعائیں مل گئیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فرشتوں میں سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ الذین یحملون العرش، فرشتوں کے بھی درجے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمیں ان کی دعائیں لینے والا بنا دے۔ اور صرف اتنی دعا نہیں، اب دوبارہ اسی حصے سے پڑھیں گے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ توبہ تو کر لی، یہ راستہ کیسے اختیار کرنا ہے؟ کیا جو یہ کہتی ہے کتاب اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ایسے تو ماں باپ بھی نہیں دعائیں کرتے ہوں گے جیسے فرشتے کر رہے ہیں۔ اور کیا کہا؟ और इनके वालदैन और बीवियों और औलाद में से जो सालेह हों इनको भी वहां इनके साथ ही पहुंचा दे, यानी आपके बच्चों को अपग्रेड करके आपके साथ पहुंचा दे, या आपके दर्जों को अपग्रेड करके आपके माँ बाप से मिला दे। खानदान में से जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी, यानी माँ बाप या बच्चों की बात कर रही हूं, अल्लाह एक को समझिए कि 20वें दर्जे की जन्नत दे रहा है क्योंकि उसके दर्जे 20वें दर्जे के थे, एक को अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस दे दी जिससे ऊपर कोई और जन्नत ही नहीं है, और अल्लाह हम सबको वही दे दे। जब जन्नत में जाएंगे तो ख्याल आएगा कि अल्लाह बच्चे, शर्त एक है कि बच्चे चाहे पहली जन्नत में पहुंच चुके हों, अगर बच्चों ने जन्नत की फ्लाइट मिस कर दी तो माँ बाप के दिल में गुमान तक नहीं आएगा अपने बच्चों का, क्योंकि जन्नत की खूबियों में खूबी है ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, गम नहीं, वरना हम तो वहां भी बच्चों के गम में ही रोते धोते रह जाए। तो जब बच्चे जन्नत में, तब माँ बाप को ख्याल आएगा, कहेंगे अल्लाह ताला मैं अपने बच्चों को मिलूँ, पता है नीचे है तो कोई नहीं, मैं मिलाती हूँ। कहा नहीं, आप नहीं जा सकती, वजह क्योंकि आपने आला दर्जे के नेकियां की और आपको नीचे की जन्नत में क्यों ले जाऊं, ये तो जुल्म है। हाँ हम एहसान कर सकते हैं, आप इधर रहिए, हम आपके बच्चों को ऊपर लाते हैं मिलाने के लिए। अब बच्चे ही जाएंगे, चलो भी चलो अम्मा अब्बा ने बुलाया है, खुशी खुशी माँ के घर जा रहे हैं, सोचिए आप अपनी माँ की जन्नत में जा रहे हैं, उसका कितना बड़ा महाल होगा। अब बच्चे वहां गए, मिले, रोए धोए, अब क्या टाइम टू गो, सॉरी अल्लाह की दूसरी सुन्नत आ जाएगी कि जन्नत की जो नेमत किसी आंख ने एक बार देख ली उससे महरूम ही नहीं, अब तुम भी इधर ही पड़े रहो। अल्लाह हमें हमारे माँ बाप की वजह से ऊंचा करना और हमारे बच्चों को हमारी वजह से ऊंचा करना, और अल्लाह हमारी औलादों को नेकियों में इतना ऊपर कर दे कि ऑपोजिट भी होगा, अगर बच्चे ऊपर हैं आप नीचे रह गए तो सेम मामला फिर बच्चों को मिलने आप जाएंगी, फिर आप वहीं रह जाएंगी। अल्लाह ने कैसे प्यारे वादे किए और हम इस किताब को भूल के पता नहीं किन के वादों के पीछे नारे लगाते रह गए। अल्लाह अकबर कबीरा, तू बेशक कादरे मुतलक और हकीम है, और बचा दे इनको बुराइयों से। असल बात है कि दुनिया में औलाद को बुराइयों से बचाने की कोशिशें करें, दाई अल्लाह बन जाए, बाकी काम अल्लाह पे छोड़ दें। फरमाए जिसको तूने कयामत के दिन बुराइयों से बचा दिए इस पर तूने बड़ा रहम किया, यही बड़ी कामयाबी है। आपने ये वाक्य आज अपने बच्चों से शेयर करना है। अच्छा अब आपने कहना क्या है, मेरी वजह से ऊपर आओगे तुम, थोड़ा तो कर लो। नहीं देखिए, आपको सुनाया ना मैंने, तो मैंने पहले आपकी मिसाल दी है, आपने अपने बच्चों को कैसे सुनाना है, पीछे वाली बात, बेटा तुम मेरे से आगे जाओगे। और यकीन करें अगर आप रो पड़ी ना इस पे, रिक्कत आ गई दिल में, तो दिल जरूर पिघलेंगे। तो तानों और शिकवों और गिलों की बजाय कभी रो के तो दिखाएं अपने बच्चों को, और यही उसूल इंशाल्लाह शौहर बीवी में भी होगा। बस एक दफा जन्नत की जमीन पे पांव लग जाए, जिसके भी लग गए अल्लाह मिला देगा, आगे भी आयत आएगी अलहिकना बिहिम, हम सबको जोड़ दें, क्योंकि मजे ही नहीं आना। इमाम शाफी कहा करते थे कि अगर तुम जन्नत में जाओ तो मेरे लिए पूछना वो किधर गया जो अपने आप को शाफी कहता था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके बरक्स तस्वीर का दूसरा रुख, इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया, क्यामत के रोज इनको पुकार कर कहा जाएगा आज तुम्हें जितना शदीद गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है, नोट करें जहन्नमियों का अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, क्या जिंदगियां जाया करके आ गए, अल्लाह तुम पर इससे ज्यादा गजबनाक उस वक्त होता था जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम कुफर करते थे। दाई लल्लाह जब बुलाता है अल्लाह की तरफ गुस्सा आता है, वहां जाके रोएंगे, का याद करो अल्लाह को कितना गुस्सा आता है, इस आयत पे गौर कीजिए। जिस बंदे को अल्लाह की तरफ आने की दावत मिल जाए और वह नखरे करे, बहाने करे, टाल मटोल करे, मसरूफ पड़ा, बिजी पड़ा, अब सुबह का वक्त, अब रात का वक्त, अब वीकडेज, अब वीकेंड, अब जॉब, अब छुट्टियां, अब बच्चे, अल्लाह कहते बैठे रहो घर, लेकिन अल्लाह को गुस्सा बड़ा आता है उस बंदे पे जो झूठे उजर पेश करता है। वो कहेंगे रब तूने वाकई हमें दो दफा मौत और दो दफा जिंदगी दे दी, अब हम अपने कसूरों का एतराफ करते हैं, तौबा। क्या अब यहां से निकलने की भी कोई सबील है, यानी एनी पॉसिबिलिटी है यहां से जाने की, जवाब मिलेगा ये हालत जिसमें तुम मुब्तला हो इस वजह से है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम मानने से इनकार कर देते थे, और जब इसके साथ दूसरों को मिलाया जाता तो तुम मान लेते थे। अब फैसला अल्लाह बुजुर्ग और बरतर के हाथ में है, वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रिस्क नाजिल करता है, मगर इन निशानियों के मुशाहदे से सबक सिर्फ वही शख्स लेता है जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला हो। दोबारा रजू की बातें आ गईं। कल गौर किया था आपने रजू पे? अवाब अनाब बार बार पलट के उसकी तरफ जाना अल्लाह को ये बड़ा अच्छा लगता है। बस सर रुजू करने वालों अल्लाह ही को पुकारो, अपने दीन को इसके लिए खालिस करके, खा तुम्हारा ये फेल काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। लोगों को बुरा लगता है जब हम बार बार अल्लाह की बात करते हैं, लेकिन फिर भी करते रहो। कौन अल्लाह जिसकी खूबियां कुछ पीछे पड़ी है, अब आगे देख लीजिए। रफीउद्दराजातिज़ुल अर्श युल्की रूह मिन अम्रिही, वो बुलंद दर्जों वाला मालिक अर्श है, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह नाजिल कर देता है ताकि वो मुलाकात के दिन से खबरदार कर दे, वो दिन जबकि सब लोग बेपर्दा होंगे। अल्लाह पर्दे रख लेना, अल्लाह से इनकी कोई बात छुपी हुई ना होगी। उस रोज पुकार कर पूछा जाएगा आज बादशाही किसकी है, सारा आलम पुकार उठेगा अल्लाह वाहिदे कहार की। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, कहा जाएगा आज हर मुतनफिस को इस कमाई का बदला दिया जाएगा जो उसने की थी, आज किसी पर जुल्म न होगा और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज है। क्यामत के मंजर ऐसे नहीं लग रहा आंखों के सामने आ रहे। वानज़िरहुम यौमल आसिफा, ए नबी डरा दो इन लोगों को जो करीब आ लगा जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, खौफ से, वहशत से और दहशत से, और लोग चुपचाप गम के घूंट पिए खड़े होंगे। कोई ऐसा वक्त याद करें कि जब बंदा अपना गम घूंटना चाहता है अंदर, ना ही किसी को पता चले, फिर भी आवाज रुंध जाती है, फिर भी आंसू छलक ही पड़ते हैं। जालिमों का ना तो कोई मुशफिक दोस्त होगा ना कोई शफी कि जिसकी बात मानी जाए, कोई कर भी लेगा ना सिफारिश, मानी को नहीं जानी जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह निगाहों की चोरी तक से वाकिफ है और वो राज जानता है जो सीनों में छुपा रखे हैं, और अल्लाह ठीक ठीक बेलाग फैसला करेगा। मत सोचिए कि उस दिन अल्लाह ना करे कोई फैसले गलत होंगे, को डर से नहीं होंगे, को रोब से नहीं होंगे। आज तो एक फोन कॉल आ जाती है किसी बड़े अफसर दफ्तर की, किसी की वजीर मशीर की, तो फैसले ही बदल जाते हैं। अल्लाह कहते मैं बेलाख फैसले करूंगा, चाहे दुनिया तुम्हें बहुत नेक समझती रही, पर मैं क्या कहूं, तुम गलत थे तो गलत थे, दिखा दो लो फरिश्तों इसकी हकीकत कि ये दुनिया में बड़ा नेक बन के फिरता था, अंदर से इसके करतूत ये थे। इसलिए हमेशा अपनी नेकी की लाज रखें। कुछ चीजें आप पहले से बदलते हैं, कुछ नेकियां करने के दौरान बदलेंगे। शर्म बड़ी आएगी, क्यों खूब दूसरों को कह दिया, अपना क्या बनेगा। तो क्यामत के दिन किसी का जोर नहीं है, अल्लाह ने जो पूछना है वो पूछ के रहना है। अल्लाह हमारे ऊपर अपनी नजरे करम कर दे। रहे वो जिनको ये मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वो किसी चीज का भी फैसला करने वाले नहीं, बिलाशिवा अल्लाह ही सब कुछ सुनने और देखने वाला है। इस वक्त भी वो सुन रहा है और इस वक्त भी वो देख रहा है कि हमारे दिलों पे क्या गुजर रहा है। क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं कि नहीं, इन लोगों का इंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे और इनसे ज्यादा जबरदस्त आसार जमीन में छोड़ गए, यानी वो अपने वक्त की सुपर पावर्स थी, मगर अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इन्हें पकड़ लिया और इनको अल्लाह से बचाने वाला कोई न था। ये इनका इंजाम इसलिए हुआ कि इनके पास इनके रसूल बय्यिनात लेकर आए, दायनिल्लाह, और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, आखिरकार अल्लाह ने इनको पकड़ लिया। देखिए, रसूल का इनकार, पकड़ अल्लाह की, यकीनन वो बड़ी कुव्वत वाला और सजा देने में बहुत सख्त है। हमने मूसा को फिरौन और हामान और कारून की तरफ अपनी निशानियों और नुमाया सनदे मामूरियत के साथ भेजा, मगर उन्होंने कहा साहिर है कज़ाब है। बातें सुननी पड़ी दावत इल्लाह के सफर में मूसा अलैहिस्सलाम को। फिर जब वो हमारी तरफ से हक इनके सामने ले आए तो उन्होंने कहा जो लोग ईमान ला कर इसके साथ शामिल हुए, इनके सब लड़कों को कत्ल कर दो और लड़कियों को जीता छोड़ दो, मगर काफिरों की चाल इकारत ही रह गई। यानी अल्लाह ने जो काम करना था कर दिया, जिस मूसा के खौफ से हजारों लाखों बच्चे कत्ल कर दिए, वो मूसा फिरौन के घर में पल गया। तो लिखिए, अल्लाह नहीं किसी से डरता, वो तो मूसा को फिरौन के घर में पलवाता है। बड़ी बात ना कह दूं, कल भी यही था, आज भी यही है, कल भी यही होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक रोज फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूं, और पुकार देखे ये अपने रब को। रोना देख रहे हो तकब्बुर, मुझे अंदेशा है कि ये तुम्हारा दीन बदल डालेगा। क्या अंदेशा था? दीन के बदलने की क्या बात है? हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा या मुल्क में फसाद बर्पा करेगा? ये जुमले कल थे, यही आज है। सच्चे मोमिन के ऊपर यही इल्जाम लगते हैं। हालांकि देखिए, मूसा ने कोई अभी तक तो दीन की बात ही नहीं थी की फिरौन से, तो रात तो बाद में नाजिल हुई। मूसा ने तो सिर्फ ये कहा था, इस बनी इसराइल को निकाल दो, छोड़ दो, ले जाऊं साथ। दो ही मकसद थे उनके, पहला मकसद अभी पूरा कर रहा है, लेकिन याद रखिए अंदर का खौफ थ्रेट पैदा करता है। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मैंने तो हर उस मुतकब्बिर के मुकाबले में जो यौमुल हिसाब पर ईमान नहीं रखता, अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है। इसको हाईलाइट करें आज की दुआ में, ये भी दुआ है, जालिम हुक्मरानों के शर से बचने की दुआ। इन्नी उस्तु बि रब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिर ला यूमिनु बियौमिल हिसाब। एक आयत ही हिफ्ज कर लें कुरान की। इस मौके पर आले ही फिरौन में से एक मोमिन उठा, जो अपना ईमान छुपाए हुए था, बोल उठा, ये है आज का हीरो, आज की काबिले तकलीद शख्सियत। इसको पढ़ें और ढूंढें अपने इर्द गिर्द। ईमान छुपाया हुआ था लेकिन छुप नहीं सका, जैसे पुदीना छुपाए भी तो नहीं छुपता, खुशबू से पहचाना जाता है। ईमान भी खुशबू से जाहिर हो जाता है, ईमान अपने कॉल ऑफ फेल से जाहिर हो जाता है। क्या बोला? क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बेजीनात ले आया? अगर वो झूठा है तो इसका झूठ खुद इसी पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन हौलनाक नताइज का वो तुमको खौफ दिलाता है, इनमें से कुछ तो जरूर तुम पर ही आ जाएंगे। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने वाला है। इसको हाईलाइट कीजिएगा। और दूसरी उसकी बात, और वो कज्जाब हो, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज्जाब। इस आयत पर गौर करें, दो लोगों को हिदायत नहीं मिलती। नंबर एक, इसराफ करने वाले को, हद से गुजरना, ज्यादतियां करना किसी भी चीज में हो, और दूसरा बहुत ही झूठा। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें बादशाही हासिल है और जमीन में तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अज़ाब हम पर आ गया तो फिर कौन हमारी मदद करेगा? जिसको आप कह सकें कि सोने के पानी से लिखने वाली बातें हैं मर्द मोमिन की। और ईमान आता है तो यही खूबसूरत जुमले मुंह से निकलते हैं, ये जुबान से थोड़ी निकलते हैं। देखिए, बात लोग लफ्जों में खो जाते हैं, ये लफ्ज कैसे बोले, किसी ने बोले, हम कैसे बोले। दिल खूबसूरत कर ले, जुबान पे खुद बहुत खूबसूरत लफ्ज आएंगे। दिल में नरमी ले आए, जुबान खुद ही नरम होगी। दिल में अल्लाह की मोहब्बत ले आए, अल्लाह आपकी जुबान पे उसकी मोहब्बत वाले मोती बखेर देगा। हम इसलाह दिल की किए बगैर सिर्फ जुबान पे काम करते हैं तो फिर इससे वो सेहत नहीं मिलती कि जो के दवा खा के मिलती है। फिरौन का जवाब सुनिए। फिरौन ने कहा, मैं तो तुम लोगों को वही राय दे रहा हूं जो मुझे मुनासिब नजर आती है, और मैं इसी रास्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करता हूं जो ठीक है। यानी फिरौन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया। आप यहां से पता चल रहा है ना कि वक्त के फिरौन के सामने खड़ा है। और हदीस में क्या आता है, बचपन से आपने टीवी पे एक हदीस पढ़ी और सुनी होगी कि बेहतरीन जिहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना है। इस मर्द मोमिन की अल्लाह को ये खूबी पसंद आ गई कि ये वक्त के फिरौन के आगे तौहीद के दलाइल पेश कर रहे हैं। और देखिए कितनी सॉलिड बातें हैं, नारे नहीं लगा रहा, ताने नहीं दे रहा, धमकियां नहीं दे रहा। आज हम मुसलमानों की एक कमी, धमकियों पे आ जाते हैं, ताने देते हैं, वो कहते हैं बड़के मारते हैं, ये कर देंगे, उसको मार देंगे, उसको तबाह कर देंगे। नहीं, दलील के मैदान में फिरौन भी हार गया। कैसे? वो शख्स जो ईमान लाया तो उसने कहा, है मेरी कौम के लोगों, मुझे खौफ है कहीं तुम पर भी वो दिन ना आ जाए जो इससे पहले बहुत से जत्थों पर आ गया, जैसा दिन कौम नूह और आद और समूद और इनके बाद वाली कौमों पर आया था। और ये हकीकत है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म का कोई इरादा नहीं रखता। या कौमिन नमा हाजिहिल हयात दुनिया मता। अल्लाह अकबर, इसके दर्द को आप महसूस करें। मैं अक्सर सोचती हूं, नबियों के नाम तो कुरान में आए, समझ आती है, नबियों की माओ का तस्करा आया, समझ आता है, नबियों के बापों दादाओं का जिक्र आता है, बात समझ आती है। चलिए लुकमान का तस्करा आ गया, समझ आती है कि हिकमती इस मर्द मोमिन की कौन सी खूबी अल्लाह को मिली? जुरत, दायन इल्लाह, सच कहना। वक्त का रुख देख कर तबलीग नहीं करता था, तेल देखो तेल की धार देखो नहीं, जो हक बात थी खूबसूरत जुमलों में दिल के दर्द के साथ पेश करता है। तो लिख लीजिए, बेहतरीन दाई दीन वही होता है जिसके दिल में दर्द हो, जिसकी जुबान पे सोज हो, और जो खैर ख्वाह हो, और आजजी के अंदाज से लोगों के दिमाग पे असर छोड़ने वाली बात करे। अल्लाह हमें ऐसा ही दाई दीन बना दे। वया कौमी इन्नी अखाफु अलैकुम यौम अत्तनात, ए कौम मुझे डर है कि कहीं तुम पर फरियादो फुगां का दिन ना आ जाए। क्योंकि दाई अल्लाह को पता होता है कि जिस तेजी से लोग गुनाहों की तरफ दौड़ रहे हैं, इसी तेजी से अल्लाह का अजाब इन पर आ रहा है। जब तुम एक दूसरे को पुकारोगे और भागे भागे फिरोगे, ये क्यामत का नाम नोट किया आपने, यौम अत्तनात। तनाद क्या है? नादा, नादिया किसी का नाम हो सकता है आप में से, निदा। सब पुकार रहे होंगे, चीहे, हाय अम्मी, हाय अब्बा, हाय बेटी, हाय अब्बा, एक दूसरे को मदद के लिए लोग पुकार रहे होंगे, मगर उस वक्त अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। सच ये है कि जिसे अल्लाह भटका दे, इसे फिर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। अल्लाह हमें भटकने से बचा ले। इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास बयीनात लेकर आए थे, मगर तुम इनकी लाई हुई तालीम की तरफ से शक ही में पड़े रहे। बोलिए, शक अमल का दुश्मन। फिर जब इनका इंतकाल हो गया तो तुमने कहा, उनके बाद अल्लाह कोई रसूल हरगिज न भेजेगा। इसी तरह अल्लाह इन सब लोगों को गुमराही में डाल देता है जो हद से गुजरने वाले और शकी होते हैं। अल्लाह हमें शक से पाक कर दे। और अल्लाह की आयत में झगड़े करते हैं बगैर इसके कि इनके पास कोई सनद या दलील आई हो। ये रवैया अल्लाह और ईमान लाने वालों के नजदीक सख्त मबगूज है। मबगूज क्या? अल्लाह को इससे बुगज है, हेटर्ड, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर और जब्बार के दिल पर ठप्पा लगा देता है। अब जब उस मर्दे मोमिन ने जुरत दिखाई, फिरौन के पास इन दलीलों का कोई जवाब नहीं था। तो जहां दलील नहीं होती ना, वहां फिर जुल्म शुरू हो जाता है। थ्रेट कर रहे, अब देखिए आप उसके खिलाफ क्या करने लगा। वकाला फिरौन या हामान, फिरौन ने कहा, ए हमन मेरे लिए एक बुलंद इमारत बनाओ ताकि मैं उन रास्तों तक पहुंच सकूं, आसमानों के रास्तों तक, और मूसा के खुदा को झांक कर देखूं। ही इज मेकिंग फन, मजाक उड़ा रहा है, किधर है रब, जरा मुझे एक जरा ऊंची सी इमारत तो बना दो। हाँ, उस इमारत से छलांग लगाता तो रब याद आ जाता, रब नजर भी आ जाता। और जरा सुनिए जुमला, मुझे तो ये मूसा झूठा ही मालूम होता है। जो खुद को सच्चा समझे उसको सब झूठे दिखते हैं। इसी तरह फिरौन के लिए इसकी बदअमली खुशनुमा बना दी गई और बराह रास्त से रोक दिया गया। फिरौन की सारी चालबाजी इसकी अपनी तबाही के रास्ते में ही सरफ हुई। कल, आज और कल फिर, यही असूल है। जिसने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नबी को चैलेंज किया, अल्लाह उसके सामने आ गया।